ओम शांति। इस सभा में सभी कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? आज बाबा ने क्या बोला? कौन बैठे हैं? ज्ञान सागर, परमात्मा, शिव, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा मुकुंभ श्रावणी जो रचा है, वो ज्ञान कुमार और ज्ञान कुमारिया बैठे हैं, है ना? आप जानते हैं हमारा भारत देश तीर्थ स्थानों में चक्कर लगाना एक संप्रदाय है। भारतवासी सब जगह जाते रहते हैं। देश के प्रमुख लोग भी तीर्थ स्थान को महत्व देते हैं, वे भी चक्कर लगाते रहते हैं। तीर्थ स्थानों पर जाने का लक्ष्य क्या है? लोगों का ये लक्ष्य रहता है कि भारत के चारों तरफ के तीर्थ स्थान पर चक्कर लगाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमें सिद्धि हो जाएगा। कई बरस के पहले आजकल जो निकला हुआ अयप्पा स्वामी भगत लोग जो केरला में मशहूर हैं, वो लोग जाते थे अयप्पा से मिलने, कास भाई लोग। इतना वो लोग नियमबद्ध धारण करते थे, काला धोती पहन के नंगे पाँव में अपने हाथ से खाना पका के खा के बहनों को नहीं भी देखते हुए ऐसे बहुत कठोर नियम धारण करके अयप्पा स्वामी का दर्शन करने लिए यात्रा करते थे। आजकल तो देखते हैं वो काला धोती पहन के बीड़ी भी पीते रहते हैं, कई लोग तो शराब भी पीते रहते हैं। तो उनकी यात्रा भी जो पहले शुद्धिकरण थी वो बदल गई। ऐसे पुराने जमानों में जो तीर्थ स्थानों पर भगत लोग यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, बहुत कठिन नियम पर वो लोग श्रद्धा से तीर्थ स्थान की यात्रा करते थे। आजकल वो भी नियम सब खत्म है, क्योंकि जहां तीर्थ स्थान है वहां ही प्लेन पहुंच जाता, व्हीकल पहुंच जाता, कोई ऐसा शारीरिक कठिन नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सब करते हुए, सांप्रदायिक रूप से भी करते हुए, उनको क्या प्राप्ति होती है? वो प्राप्ति हम देखते हैं अल्पकाल की प्राप्ति, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति करने के लिए भी भारतवासी भाई बहने कितना इंतजाम करके कैसे भी भारत की जो तीर्थ स्थान है सब जगह चक्कर लगा के दर्शन करके आने की प्रयास करते हैं। हम सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, इसी स्थान को सर्वोत्तम तीर्थ स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्व सिद्धि सर्व प्राप्ति हमें होती है। लेकिन वो प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए इस महान तीर्थ स्थान पर हमें सर्व प्राप्ति हुई है, सर्व सिद्धि हुई है, उसका अनुभव करने के लिए इस तीर्थ स्थान के कुछ एक नियम मर्यादाएं हैं, वो आप सभी जानते हैं, पालन भी करते हैं। जो करके आते हैं उनको ही इस सर्वोत्तम तीर्थ स्थान का बहुत वैल्यू रहती है, जो एक बार भी मिस नहीं करेंगे, हर साल आते रहेंगे, जिन्होंने वो अनुभव किया हो। लेकिन हम लोग फिर से उसको रिवाइज करेंगे, इस महान सर्वतीर्थ स्थान पर आने वाले कैसे होने चाहिए। यहां तो तीनों कालों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तीनों कालों की प्राप्ति या सिद्धि क्या होती है उसका भी हम सभी मिलकर विचार करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे भारत के कई तीर्थ स्थान हैं जो व्यक्ति उनसे प्रसिद्ध है, उन्होंने जो साधना किया हो उसके ऊपर तीर्थ स्थान बनी हुई है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति की साधना नहीं है, व्यक्तियों को साधना करने के लिए जो सर्व प्राप्ति कराने वाला भंडार, सर्व भंडार स्वरूपी परमात्मा इस धरा पर आए हैं। परमात्मा से प्राप्ति का, सिद्धि का अनुभव करने के लिए आने वाले यात्री कहो या ज्ञान कुमार कुमारी कहो, उसको सबसे पहले जीते जी मरना होगा। जो आज बाबा ने हम सबको याद दिलाया, जो जीते जी मरते हैं वही बाबा के गोदी लेते हैं। हमें अपना जीवन शुद्धि बनाने के लिए जीते जी मरना, सबसे पहले अपने मन से जीते जी मरना है। दुनिया के लोगों को जीने तक मरने तक जो भी बात घटना बीत जाती है तो भी वो भूल नहीं सकते, लेकिन ज्ञान कुमार कुमारियों को सब बातों की पुलिसटाप देना, तुरंत देना, एक सेकंड में देना, ये ज्ञान सागर पिता परमात्मा ने हमें सिखाया है। जिन्होंने समझा अच्छी तरह, समझदार है, वे जल्दी से जल्दी पुलिस स्टाफ दे देते हैं। वे सहज अपने मन की शुद्धि कर लेते हैं। जब तक मन शुद्धि नहीं होगा तब तक इस महान तीर्थ स्थान का अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ भी आके पुरानी बातों को आप याद करते रहेंगे, लौकिक अलौकिक वालों का जो भी कमी कमजोरी है उसको चिंतन करते रहेंगे और एक दो को बांटते रहेंगे, वे कभी इस महान तीर्थ स्थान का अनुभव नहीं कर पाते। वे मन को बड़ा शुद्धि, सकारात्मक चिंतन, ज्ञान चिंतन, दुनिया में कहते हैं पॉजिटिव चिंतन, लेकिन पॉजिटिव चिंतन क्या होती है, कैसे करना, उनके पास कोई साधन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अनगिनत ज्ञान रत्नों के खजाना रोज बाबा हमें बरता है, पढ़ाता है, सिखाता है। उनको जितना हम अपनी बुद्धि रूपी झोली में भर के उसकी महत्व दे करके उसके ऊपर गहराई में जाएंगे, ज्ञान चिंतन मंथन करेंगे, उसका उतना ही हमारा मन अच्छा शक्तिशाली भी बनेगी, शुद्धि भी हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी और ज्ञान चिंतन करने वाले ज्ञान कुमार कुमारिया प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो इस तीर्थ स्थान पर मन में थोड़ा भी व्यर्थ बातें होंगी, पुरानी बातें होंगी, वे कभी ना ब्राह्मण बन सकते ना योगी बन सकते। दुनिया के शूद्र जीवन में अशुद्धि बातें ही अपने जीवन के सर्वतोभाग भरा हुआ है। बाबा के बच्चों को अपने जीवन में अपने मन की शुद्धि के लिए ज्ञान रत्नों को भरना है, उसका चिंतन करना है। जब तक उसका चिंतन नहीं करते तब तक हम मन की शुद्धि का अनुभव नहीं कर सकते। जब मन बहुत ज्ञान से भरा हुआ होगा उतना हमारा मन पवित्र शुद्ध होगा। जो मन एक साथ एकाग्र चित्त होकर के योगेश्वर के साथ मन बुद्धि के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आने वाले भाई बहने ज्ञानी आत्माएं सच्चे ब्राह्मण और योगी ब्राह्मण सो योगी बनकर के ही आवे या बनकर के ही रहे तभी सर्वोत्तम तीर्थ स्थान का अनुभव कर सकते। क्योंकि ज्ञान सागर बाबा ने जो अनुभवी रथ वानप्रस्थ अवस्था में ब्रह्मा बाबा का आधार लिया, उन्होंने पूरा ही ज्ञान सागर से ज्ञान को अप करके बाप समान बन गए। बाबा का जो था वो मम्मा ने अप कर लिया, मम्मा के साथ दादियों ने सब अप कर लिया, जिससे यहाँ पर बाबा के घर में चाहे पांडव भवन चाहे ज्ञान सरोवर और विशेष शांति वन में स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा का अवतरित स्थान है। इधर इतना वाइब्रेशन भरा हुआ है, जिन आत्मा का मन शुद्धि होगा इस वाइब्रेशन के स्थान पे आकर के अति सहज बड़े साकार में बाबा को हम नहीं देख सकते, आकारी रूप से अव्यक्त रूप से भी इसी पवित्र स्थान पे स्वयं बाप का अनुभव कर सकते हैं। तीर्थ स्थानों पर जड़ मूर्तियों को देखते लेकिन वहाँ जड़ मूर्ति ना देखता है ना कुछ बात करता है। यहाँ तो बाबा अव्यक्त है, बाबा अव्यक्त होकर के भी साकार मूर्तियों से चैतन्य में दादियों द्वारा अनेक महारथी भाई बहनों द्वारा ज्ञान रत्नों से हमारे साथ बातें करता है। ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये ब्लाइंड फेथ नहीं है। हम प्रैक्टिकल रूप से जो बाबा से पाया हुआ ज्ञान रत्न है उनका जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, मनन चिंतन किया, गहरा में गए, उसका बहुत लाभ उठाए, वे लोग यहाँ पर ज्ञान की धारा बहाते हैं। तो जितना हम ज्ञान को भरेंगे अपना मन शुद्ध करते रहेंगे। आप देखिए सारा दिन में कितना बार क्लासेस होगा। एक तो सबसे पहले ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा खुद ही अपनी मुरली द्वारा हमें ज्ञान की रत्नों को बरसाते हैं। चार पेज की मुरली हमें याद नहीं रहता, सार रूप में भी दो पॉइंट याद करना सारे दिन में भूल जाते। अगर सचमुच जैसे जानकी दादी 12 बार पढ़ती थी पहले, अभी भी हम दादी को देखते मुरली साथ में रहता, बार बार रिवाइज करते। सब दादियां अभी तक 80 साल के बाद भी कितने ज्ञान रत्नों के ऊपर बाबा की मुरली के ऊपर कदर रखते, उसको रिवाइज करते, उस मुरली को मनन चिंतन करते, उसको ही सबको बांटते रहते। तो हम भी ऐसा अगर सारा दिन अपना मन को उस ज्ञान रत्न में बिजी रखेंगे तो हमारा मन बाबा के साथ रहेगा। हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, वो सवाल ही नहीं रहेगा। निरंतर हम मधुबन में, यहाँ तो कोई धंधा दूरी नहीं है, गृहस्थी नहीं है, व्यवहार नहीं है, उसकी चिंता करके हमें बाबा को भूलने की, यहाँ सब कुछ हमें मौका दिया बाबा ने, सारा दिन बाबा की ज्ञान रत्नों से खेलने का और उसका गहराई में जाकर के अनुभव करने का, और एक दो आपस में मिलते हैं तो भाई बहनों को अपना अनुभव बांटने का, और क्लासेस सुनते रहे सारा दिन, जो 5 बार 10-11 बजे, शाम को 2 बार, फिर रात को 1 बार, कितना हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं अनगिनत। 1 घंटा का ज्ञान भी कोई बुद्धि में याद नहीं रख सकते, इतना बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न हमें दे रहे हैं, तो कितना हम बाबा को थैंक्स देवें, हमारा कपाट खुल जाता। कैसे हम सोचा भी नहीं था ऐसा भी श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिलता, देखना हो तो कैसे देखे, सुनना हो तो कैसे सुने, बोलना हो तो कैसे बोले, हर बात के ज्ञान, हर कर्म के ज्ञान, हर संबंध कैसे शुद्ध रखे। मन की शुद्धि ही नहीं है, जब मन शुद्ध हो जाएगा तो तन भी शुद्ध हो जाएगा। मन की शुद्धि से बाबा के साथ हमारा संबंध डायरेक्ट जुड़ जाएगा, नहीं तो भगत लोग आप जानते हैं घर छोड़ के मंदिर या तीर्थ स्थान पर जावे तो भी वहाँ कोई भगवान का अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग यहाँ सहज अनुभव कर सकते जब हमारा मन शुद्धि हो जाता। जहाँ से भी आए हैं वहाँ से पहले से दीर्घ काल हम अभ्यास किया हो, धारण किया हो, तब यहाँ भी हमारा मन लक्ष्य रख के आवे तो मन, जब तक हम मधुबन में रहेंगे हमारा मन को कोई भी बात में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारा मन को शुद्धि रूप से जो भी बाबा हमें जिनके द्वारा भी ज्ञान रतन बांटे उसको स्वीकार करेंगे, उसको मन बुद्धि में भरेंगे, ये लक्ष्य रखेंगे तो अपने मन को शुद्ध करने में कोई देरी नहीं लगता। जितना ज्ञान से मन शक्तिशाली हो जाता उतना हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या परिस्थिति आती है, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे प्रकृति द्वारा, किसी भी द्वारा आता है तो उसको हल करने में, उसको जीतने में, उससे पार होने में कोई तकलीफ नहीं है, सहज सहज हम पार हो जाते, क्योंकि हमारे पास ज्ञान की शक्ति, जिनके पास ज्ञान की शक्ति है उनके पास योग की शक्ति भी आ जाती, क्योंकि ज्ञान परमात्मा ज्ञान सागर का है, उसका ज्ञान हमारे मन में है तो हमारा मन बाबा के साथ लग जाता, तो बाबा की शक्ति मन के अंदर प्राप्त हो जाती। जो बाबा ने परसों मुरली में सुनाया, बच्चे अगर किसी भी बात में सुस्त हो जाते, क्यों होते बाबा से, सॉरी बाबा ने बोला सर्वशक्तियां प्राप्त किया है, सर्वशक्तियां भी आप लोग अनुभव करना, एक भी शक्ति कम नहीं होना, ऐसा नहीं सोचना हमारे पास बहुत शक्तियां है, बाकी 1-2 शक्तियां नहीं हो तो क्या हर्जा। जिस बात की आप लोग हर्जा बोलते हो उसी बात में फेल हो जाते हो, उसी शक्ति का ही परीक्षा होगी, उसी में आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा मन शुद्धि होंगे तो सर्वशक्तिवान बाप से सर्वशक्तियां हम प्राप्त करने में योग्य बन जाते हैं। तो इसलिए मन की शुद्धि करना, मन शुद्ध बना करके आना बाबा के घर में, इस सर्वोत्तम तीर्थ स्थान में बहुत जरूरी है। वहाँ जितना भी हम शुद्धि है, थोड़ा बहुत अशुद्धि है तो यहाँ पर सब क्लीन करके जाना है। दूसरा है तन की शुद्धि। बाबा ने तन की शुद्धि बनाने के लिए कई नियम हमें इस तीर्थ स्थान पर पहुंचने के लिए किया। वहां जो ज्ञान को सुनना है, धारण करना हो, तो भी बाबा ने सभी बच्चों को अपने घर में रहते हुए भी अपना तन को शुद्धि करने का नियम बताया है, मन को भी शुद्धि करने का। जैसे तन के लिए आहार शुद्धि हम मानते हैं, जो कहां भी इस दुनिया में कोई भी संघ संस्था में आहार शुद्धि नहीं है, लसन भी खाएंगे, दूसरा भी कुछ खाएंगे, जहां तहां कोई भी तीर्थ स्थान हो, सभी जगह बिजनेस होगा, वहां खाके पी के तीर्थ स्थान घूम के आएंगे। एक बार हमारे मैसूर के बड़े जगत गुरु ने 2000 लोगों को लेके दिल्ली से और दिल्ली के आसपास तीर्थ स्थानों में घुमाए थे। साधु संत और आम वीआईपी जनता सब आए थे उस ट्रेन में। एक दिन के लिए मधुबन पहुंचे थे। वे सभी इतना थके हुए थे। यहां हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी ने उनको बड़े दिल से स्वागत करके उनको सब कुछ प्रबंध किया, स्नान पान का, भोजन का, रहने का। इतना वे लोग खुश हो गए, हम सभी इतना दिन जो सारा बाहर घुमा उसके बदले यहाँ ही रहे तो बहुत अच्छा होता था। आज भी वो लोग, जो भी संत लोग यहाँ पर आए थे, पब्लिक लोग आए थे, आज भी मिलते हैं तो वही बात सुनाते हैं। जब हम लोग वहां गए उस ट्रेन में, फ्री टिकट, फ्री भोजन, फ्री स्वामी जी सब कुछ फ्री करके भेजे थे, तो भी थक गए थे क्योंकि शुद्धता नहीं था। तो बाबा के घर में आके इतना शुद्धि, शुद्ध भोजन, पवित्र स्थान, शुद्ध वातावरण, वाइब्रेशन, ये सभी उनका थकावट भी पूरा कर लिया और उनको मन को, तन को सब शक्ति मिल गया। ऐसा सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान है। जो साधु संत खुद त्याग किया, तपस्या किया, तो भी ऐसे वातावरण उनको नहीं मिला, ना मिलता है। कितना भी वो लोग श्रेष्ठ तीर्थ स्थान माने, मन को शुद्ध करने का ज्ञान कहां भी नहीं मिलता। मैं एक बार वो जगत गुरुओं का संगठन में गई थी, वहां एक गुरु शरीर छोड़ा था, उनके ऊपर सब लोग मिलके, पब्लिक लोग, बड़े बड़े लोग, उनकी कमी कमजोरियां ही वर्णन करके हंसते थे, हंसी कुड़ी करते थे, ऐसे थे स्वामी जी, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। मेरे को तो बड़ा वंडर लगा, तो मैंने ये बोली, स्वामी जी को जगत गुरु मानते, इतने बड़े होके गए, उनका यहाँ शांति का दिन मना रहे हैं और आप लोग सारा अशांति की बातें सुना रहे हैं, वो कैसे संत बने? कुछ तो अच्छा कर्म किया। तो वो सच्ची बात को हम लोग दौड़ाना, याद करना, वो इतना उनका अटेंशन रहना, वो लौकिक दुनिया में कोई भी सत्संग में, कोई भी जगह में नहीं है। बाबा के घर में, बाबा की मुरली द्वारा, बड़ों का संघ द्वारा, उनके वाइब्रेशन द्वारा हमें यहाँ अटेंशन रहता, हमें कोई व्यर्थ बातें ना सोचना, ना बोलना, ना सुनना। हाँ, इतना शुद्ध हमारा मन को रखना, हमारा तन को रखना, हमारा वचन को रखना, हमारा आपसी संबंध को शुद्ध रखना, ये सभी ध्यान अटेंशन हमें रहता है। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान पे हम लोग आए हैं। यहाँ भी ब्राह्मण लोग, बाबा के बच्चे, कोई भी प्रकार का अशुद्धि का वातावरण नहीं फैलाना। अगर फैलाएंगे तो बाबा कहता 100 गुना। बाबा के बच्चे यहाँ पर आके 100 गुना अच्छा भर के जाना है और 100 गुना दंड भरने की, जो व्यर्थ फैलाते हैं उनको तो अपना 100 गुना भोगना पड़ता है। ऐसा बन के कभी नहीं जाना। बाबा के वरदानों से, बाबा के शक्तियों से, बाबा का ये पवित्र वाइब्रेशन बन के जाना, ऐसे वातावरण में हम आए हैं। इसलिए आहार शुद्धि भी, कई ब्राह्मण ट्रैवल करके आते हैं, ट्रेन में स्नान भी नहीं करते और कई लोग होटल में चाय लेके पी लेते, बाकी नाश्ता आदि क्या करते वो हमने नहीं देखा। देखा हुआ है चाय लेना, कॉफी पीना और स्नान नहीं करना। बाबा के बच्चे ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने हमें नियम सिखाया है, जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं, योगी होते हैं, योग करना है, ज्ञान सुनना है, कहाँ भी रहे तो वहाँ हमारे तन की शुद्धता भी होनी बहुत जरूरी है। स्थूल स्नान भी करना है और आत्मा की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए ज्ञान स्नान भी करना है और आहार शुद्ध, स्थूल रूप से भी आहार शुद्धि लेना बहुत जरूरी है। अभी अभी हमने पेपरों में समाचार सुना, एक राजनेता था जो तीर्थ स्थान में गया, वो मछली खा के गया, सारा न्यूज़पेपर में इश्यू हो गया। ये इतना बड़ा राजनेता जब तीर्थ स्थान पे मंदिर में गया तो मछली खा के गया। हालांकि दुनिया वाले मछली नहीं खाना वो नहीं बोलते, खा सकते, छुट्टी है, लेकिन तीर्थ स्थान पे जब जाते हैं तब खा के नहीं जाना, बाकी वापस आने के बाद खा सकते। उसके बाद दूसरा बड़ा नेता ने उसी तीर्थ स्थान पे गए, वो बड़ा शुद्धि से उपवास रह के गया, वहां के पूजा पाठा सब बाधे करने के बाद वो प्रसाद लिए। इतना वो दोनों राजनेताओं का कॉन्ट्रास्ट पेपरों में आया। तो देखिए दुनिया वाले भी अशुद्ध आहार को खाते हुए, उसको खाने की मंजूर देते हुए, लेकिन तीर्थ स्थान के महत्व देते वहां नहीं खाना, अल्पकाल के लिए वो नियम पालन करते। लेकिन बाबा का स्थान सर्वोत्तम है, इसलिए जब हम बाबा के बच्चे बन जाते अशुद्धि से मर जाते, जीते जी मर जाते, मन से भी मर जाते, तन से भी मर जाते और धन से भी, धन से जो बहुत पाप करते थे, बाबा ने भी आज बोला मुरली में, धन कैसे व्यर्थ फालतू खर्चों में किया है? तो ऐसे बाबा के बच्चे तन मन धन संबंध सब बातों में पवित्रता को धारण करते, शुद्धि को धारण करते, तभी ये सर्वोत्तम स्थान का अनुभव कर सकते हैं। जो नहीं करते, ऐसे ही आके ऐसे ही जाते, तो सर्वोत्तम तीर्थ स्थान पे गए, ये विशेष शक्तियां हमें प्राप्त हुई, हमारा जीवन बदल गया, ये अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को जांचना होगा, हम किस रीति से यहाँ पर आए हुए हैं, हम ऐसे योगी बन करके, शुद्ध बन के जीवन को ऐसा श्रेष्ठ अनुभूति करने का लक्ष्य लेके आए हैं, या ऐसे ही समय चलाने के लिए, समय गंवाने के लिए आए हैं। ये बहुत हम सबको, एक एक बाबा के बच्चों को अपने पर ध्यान देना, जांच करना, और यहाँ जब तक रहते हैं तब तक एक एक सेकंड में अपना ये सब प्रकार का शुद्धि रखना, शुद्धता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और दूसरा, बाबा ने हमें यहाँ विशेष ये अनुभूति कराते, बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा द्वारा 30-40 बरस पालना दिया साकार रूप में, उसके बाद भी अव्यक्त रूप में भी बाबा ने 45 बरस तक, 45 इयर्स तक हमें पालना दिया, अभी भी दे रहा है। रथ को बाबा कैसे रिपेयर करता, तो भी बाबा को बच्चों के ऊपर इतना प्यार है, जो अभी लास्ट में आने वाले बच्चों को भी थोड़ा कुछ मिल जाए। अगर रथ ठीक नहीं रहेगा तो बाबा क्या कर सकता। रथ को बहुत प्रयास किया जाता है, कैसे भी बाबा के बच्चे इस सीजन में आते हैं तो बाबा मिल जाए। रथ ठीक नहीं है तो बाबा नहीं मिल सकता। लेकिन जिस साल में बाबा हमें इतना पालना दिया है, 80 साल तक पालना दिया, वह वाइब्रेशन एक मंदिर में, जड़ मंदिर में जाते हैं 10-20 साल वो बांधा हुआ मंदिर, चाहे 40 बरस बांधा हुआ हो, 50 बरस बांधा हुआ हो, जैसे केदारनाथ मंदिर तीर्थ स्थान सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान माना जाता, वहाँ 2-4 साल पहले इतना प्रकृति आपदाएं हो गए, सुनामी हो गए, फिर भी उस स्थान को कितना कदर रखते हैं, कितना उसकी वैल्यू देते हैं, मान्यता देते हैं। लेकिन बाबा के स्थान पे ऐसी कोई बात नहीं है, कितना साफ सुथरा है, सभी बाबा के बच्चे कितने शांतिपूर्वक सारा दिन की दिनचर्या बिता रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है। ये बाबा ने जो वाइब्रेशन भर के रखा, दादियों ने जो पुरुषार्थ करके, योग करके, तपस्या करके वाइब्रेशन भरा हुआ है, बड़े भाइयों ने, बड़े बहनों ने जो भर के रखा है, वो वाइब्रेशन यहाँ जो भी भाई बहन आते हैं वो पा रहे हैं। अभी भी हम लोग अव्यक्त रूप से बाबा से निराग, जैसे बाबा ने कल अव्यक्त मुरली में सुनाया, आप बच्चे साकार में मिलने आते हैं तो बहुत बंधन होता, आपको यहाँ बैठना, वहाँ बैठना, इतना जल्दी उठना, लेकिन आप आकार में मिलो तो आपको कोई कितना भी मिलो, कितना देर भी बैठो, कोई आपको बंधन नहीं है। तो हम सभी यही लक्ष्य लेके, अभी बाबा चाहे साकार में मिलो चाहे आकार में मिलो, हम आपके पास आए हैं, हैं? मधुबन में बाबा नहीं आया ये बात नहीं है, बाबा जरूर आता है। साकार में रथ ठीक है तो आएगा, नहीं तो आकारी रूप से आके हम सबसे मिलेगा, विशेष शक्ति भरेगा, विशेष अनुभूति कराएगा। तो इसलिए हम सभी को बहुत ध्यान रखना अपने पुरुषार्थ के ऊपर। तो आप सभी बाबा के घर का इतना प्यार से, इतना लगन से आप सभी आए हैं, तो जितना आप हर क्लास में इधर उधर ना बैठ करके पूरा क्लास में बैठेंगे, पूरा ज्ञान सुनेंगे, उतना आप विशेष अनुभव करेंगे। तो मधुबन घर में आप ले जाने की 5 बातें मैं आपको सुनाऊंगी। मधुबन से क्या ले जाना, यहाँ से भर के और साथ में ले जाना। बाबा कहता है आप लोग सारा सभी बादल बन के भर के जाओ, फिर वहां बरसाओ, ऐसे खाली नहीं जाना। तो एक तो पहले सभी को बादल बनना, बादल माना ज्ञान रत्नों को भर के जाना। जितना बादल अच्छी तरह बरते हैं तो ऐसे बरसते हैं जो सभी क्लीन हो जाते हैं, सभी का मन। अभी 4-5 साल से बरसात नहीं था, स्थूल बरसात, कितना सबको तकलीफ होता था। अभी इस साल में दशहरा से लेकर इतना बरसात आया, सारी भारत देश में सब लोग भरपूर हो गए। तो इसी तरह हम लोग हर साल बाबा के पास आते हैं, तो पहले तो हम बादल बन के अच्छी तरह ज्ञान रत्नों को बुद्धि में भर के जाना है, अपने लौकिक घर वालों को भी सुनाना है, अपने ज्ञान में आने वाले देवी परिवार को भी सुनाना, अपने आप को भी रोज सुनाते रहना हमने बाबा के घर से क्या भर के आए हैं। क्योंकि ये बादल जब बरसता है ज्ञान को रिपीट करते हैं अपने मन में, अपने मुख से रिपीट करते हैं, तो हम और अच्छी तरह ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण कर लेते, कभी भूलते नहीं है। तो इसलिए ये मौका मिला है ज्ञान रत्नों को बनने का। ज्ञान रत्न जो बरते वो अपने पांव पर खड़े रहते। जिनके पास ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा है, वो कभी अज्ञान के कोई भी बात अशांति फैलाने का या दुखी बनने का या खुशी खोने का कोई भी बात पर परवाह नहीं करते। ऐसी बातें आती हैं हमारे सामने, लेकिन ज्ञानी आत्माएं उन बातों में अटकेंगे नहीं, वो सभी सहज रीति से पार करते जाएंगे, उसका इफेक्ट भी नहीं होगा, उसमें डिफेक्ट भी नहीं बनेंगे। ये मधुबन में ऐसा ज्ञान की शक्तिशाली बन के जाना है आगे भी। मधुबन में तो होना ही नहीं है, हाँ डिस्टर्ब होना नहीं है, अपने मन को अशांत करना नहीं है, लेकिन जाने के बाद भी अपने घर में, अपने व्यवहार में, अपने सगे संबंधों में, लौकिक में, अलौकिक में, दुनिया में, किसी भी बात में हमारे मन की अशांति या हमारी स्थिति की डिस्टर्बेंस नहीं होना, वो ऐसी शक्ति हमें यहाँ से भर के जाना है। ज्ञानी आत्मा उसको कहा जाता। दुनिया भी कितना भी पढ़ा लिखे होंगे, थोड़े बहुत घटनाएं परिस्थितियां समस्याएं आती है तो जल्दी से जल्दी अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते, अशांत हो जाते, दुखी हो जाते। तो बाबा के बच्चों में इतने ताकत है, क्योंकि बाबा ने दिया हुआ श्रेष्ठ ज्ञान में इतना ताकत है। उस ज्ञान को कितना हम अपनाते, अपना बनाते, उतना हम अपने पांव पर खड़े हैं। बाबा कहते हैं ना, अपने पांव पर खड़े रहना। ज्ञान को धारण करके कोई भी बातों में हम हिलेंगे नहीं, हमारा जीवन को बहुत सेफ्टी से चलाएंगे। ऐसे स्थूल रूप सूक्ष्म रूप में हमारा मन को स्ट्रांग बना के रखेंगे। ये है ज्ञान की शक्ति। जितना अच्छा ज्ञान को समझते उतना हमारा योग लगा रहता। बाबा के साथ डायरेक्ट निरंतर, तो बाबा से हमें ऐसी शक्तियां प्राप्त होती है जो बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट बना करके कहां भी जिस भी आत्मा को वो शक्ति देने का काम कराता। खुद के लिए हमको बाबा से शक्ति मांगने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी बनने के बाद योगी सहज बन जाते हैं, योगी योगेश्वर के साथी बन जाते हैं। तो योगेश्वर जब साथी बन जाता तो वो योग की शक्ति साथ रहता। योग की शक्ति से हम जो कर्म करते, जो सेवा करते, जो कार्य करते, वो सब सिद्धि हो जाते। जैसे हमने पहले कहा, यहाँ आने के बाद तीनों कालों की सिद्धि होती। एक भूत काल की सिद्धि वो है, हमने जो अज्ञान से अनजान से पाप किया, पाप कर्मों का बोझ उठाया, वो बीमारियों द्वारा भोग रहे हैं, संबंधों के द्वारा भोग रहे हैं, समस्या और परिस्थिति द्वारा भोग रहे हैं, लेकिन बाबा के ज्ञान की शक्ति और बाबा के योग की शक्ति जितना हमारे अंदर बढ़ते जाते उतना वो सब फास्ट की बातें, बीती हुई बातें, भूतकाल की प्राप्ति जो हुई है डिफेक्ट रूप से, उन सब को हम समाप्त कर सकते हैं। ऐसी श्रेष्ठ शक्तियां हमें बाबा के ज्ञान लेने से, बाबा के घर में आने से प्राप्त होती है। आप अमृत वेले का योग पावरफुल करके देखिए, जो हमें बनना है, जो शक्ति हमें मिलना है, बाबा स्पेशल स्पेशल कोटा उस समय भरता है। सारा दिन योग उनका लगेगा जो अमृत वेला योग पावरफुल करते हैं। तो बाबा सुबह सुबह अमृत वेला शुभ समय प्रातः वेला ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता और ज्ञान का सागर परमात्मा दोनों हमारा हमें जो चाहिए वो भर लेते। जो बच्चे नींद नहीं करेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे, प्यार से बाबा की याद में खो जाएंगे, उन बच्चों को बाबा बांधा हुआ है। ऐसे भक्तों माफी कुटके जुटका खाने से नहीं मिलेगा, बाबा देने से भी क्लियर नहीं है, माइंड मिलेगा नहीं। बाबा देता रहता तो भी ले नहीं सकते। इसलिए अमृत वेले से हम प्राप्त कर लेंगे तो सारा दिन का योग लगा रहेगा। योग करने की हम भूल गए, वो घर जैसे बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और दूसरा, वर्तमान समय में जो भी हमारा कर्म नए सिर रूप से हमारा हिसाब किताब ना बन जाए, कर्म का बंधन ना हो जाए, उस पर भी हमें अटेंशन है ज्ञान से और योग से। जो ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं तो अपना कर्म को किसी के साथ भी कोई भी कर्म बुरा कर्म नहीं करेंगे या नया खाता नहीं बनाएंगे। बाबा रोज मुरली में हमें पढ़ाता है, इतना अटेंशन रहेगा। अपना वर्तमान समय भी बहुत खुशी है, पुरानी बातों को भी, पिछले जन्म का भी समाप्त कर सकते, वर्तमान समय को भी हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। बाबा ने बोला ना, सारे समय में श्रेष्ठ समय धर्माव युग संगम युग है, ये अधिक युग है, स्पेशल युग, दुनिया वालों के लिए नहीं, बाबा के बच्चों के लिए। ये जैसे अधिक मास मिलता है बरस में स्थूल रूप से, ये ऐसे स्पेशल युग हमें संगम युग मिला है। इस संगम युग में हर दिन हर क्षण जितना हम साधना करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बाबा से मिला हुआ प्राप्तियों का, ज्ञान शक्तियों का, गुणों का, और उसको धारण करते हुए जीवन में अनुभव करेंगे, उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा, शक्तिशाली होता जाएगा, हमारा जीवन वैल्यूबल होता जाएगा। ब्राह्मण जीवन, वर्तमान समय संगम युग का जीवन, किसी का जीवन ऐसा खुशी का जीवन नहीं है, निश्चिंत जीवन नहीं है। बाबा ने ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान दिया, सब बातों में हम निश्चिंत हो सकते हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, हमें घर नहीं है, हमें वर नहीं है, हमें कुछ नहीं है, चिंता नहीं है। ऐसा ज्ञान है, ऐसा पुरुषार्थ है, ऐसी धारणा है, वर्तमान भी हम खुश रह के भविष्य में भी हम उज्ज्वल हो सकते, श्रेष्ठ बन सकते, जो गारंटी बाबा ने दिया। बच्चे वर्तमान समय आप शुद्ध होके चलेंगे, पवित्र होके चलेंगे, आपका 21 जन्म गारंटी, आपका जीवन संपन्न होगा। ऐसा गारंटी कौन देता है मनुष्य? खुद ही गारंटी नहीं है तो दूसरों को गारंटी कौन देगा? तो ये परमात्मा अविनाशी पिता है, उसे जो प्राप्ति है वो अविनाशी है, तो उन्होंने हमें गारंटी दिया, उन्होंने हमें पुरुषार्थ कराया, हमारा जीवन को श्रेष्ठ बनाया, तो उनकी श्रीमत पर हम जितना चलते जाते उतना हमारा भविष्य जीवन उज्ज्वल हो जाता, भविष्य की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगा। वर्तमान काल भी सिद्धि रूप है, जो चाहते हम कर सकते, तन की भी शुद्धता, मन की भी शुद्धता, संबंधों को भी शुद्धता, कार्य व्यवहार में भी शुद्धता, दुनिया में नहीं कर सकते। कितना भी पढ़ा लिखा होगा, कितना भी बड़ा नेता होगा, भले मुख से कितना भी बड़ा भाषण करता होगा, लेकिन कार्य शुद्धता नहीं हो सकता, व्यवहार शुद्धता नहीं हो सकता, संबंधों की शुद्धता नहीं हो सकता। हर रोज उनकी जो भी अशुद्धि है, जो भी उनकी बुराइयां हैं, वो सब पेपरों में हम पढ़ते हैं। हमें इतना नशा होना चाहिए, बाबा ने हमें कितना श्रेष्ठ बनाया। जो भले बाबा के बच्चे साधारण है, दुनिया वाले पहचानते नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं, हम निडर हो सकते हैं, अपने पांव पर हम रह सकते हैं, हमारा भूतकाल को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, वर्तमान को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, भविष्य काल को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। इतना ताकत बाबा हमें दे दिया, तो ऐसे बाबा को कितना दिल से प्यार से बाबा को याद करना होगा। तो जितना भी समय हम बाबा के इस सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान पर रहते हैं, उतना हम हर क्षण बाबा को प्यार से याद करते जाए। जब दादियां हमारे सामने आते, कोई बड़े महारथी भाई बहन हमारे सामने आते, उन्होंने जो बाबा से प्राप्त किया है, उनकी दृष्टि से, उनकी रुचि से, उनके वचन से हमें बाबा प्राप्ति करा लेता, उसे निश्चय से आप बैठेंगे और सुनेंगे और पुरुषार्थ करेंगे, वो बाबा करा लेता। तो मैं आशा रखती हूँ आप सभी इस सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान पर आए हैं तीनों कालों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और अपना तन मन धन संबंधों में सभी प्रकार के जीवन में शुद्धता को प्राप्त करने के लिए या संपूर्ण पवित्र बनने के लिए आप आए हैं। ऐसे प्राप्ति करके ही जाएंगे, ऐसा आशा रखते हुए आपको बाबा के ऊपर इतना हमें विश्वास होना चाहिए। बाबा के ऊपर कभी हमें संकल्प नहीं करना चाहिए, बाबा क्या है, बाबा तो निराकार है, वो हमारे जैसे साकार होते तो पता पड़ता है, ऐसा कई लोग बोल लेते बहुत सरल रीति से। इसके ऊपर मेरे को एक कहानी याद आता, एक मंदिर में एक व्यक्ति झाड़ू लगाता था। वो बहुत साल झाड़ू लगाते लगाते भगवान को कहता था, आप तो क्या ऐसे खड़े रहते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो झाड़ू लगा के थक गया हूँ, आप थोड़ा झाड़ू लगाओ तो पता पड़ेगा है? तो एक दिन भी आप झाड़ू लगा के देखो, ऐसा भगवान के साथ चैलेंज किया उसने। तो कहानी में कहते हैं भगवान ने बोला, भले ठीक है मैं झाड़ू लगाएंगा, आप भगवान के स्थान पे खड़े हो जाओ। तो बड़ा खुश हो गया भगत। तो भगत को भगवान ने कहा, खड़े होना बड़ी बात तो नहीं है, खड़े होने के लिए कुछ शर्त है, उस शर्त से खड़े होना है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है ना, मनुष्य देखेगा तो उसके मन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, सुनेगा तो कितना इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे ही खड़े रहना सुनते हुए देखते हुए कितनी मुश्किल बातें हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला, एक दिन भी भले खड़े रहो, देखो अनुभव करो, लेकिन साक्षी होके खड़े रहना। आप ऐसा नहीं समझना, बहुत सरल है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव करो। आप देखो सबको, भगत लोग जितने भी आते हैं उनको देखते रहो, लेकिन बोलना नहीं है, उस बात को आप चिंता नहीं करना है, आप साक्षी होके देखना है। फिर भी भगत बोला, उसने बोला ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, मैं खड़े हो जाऊंगा। खड़े हो गया भगत भगवान के स्थान पे, भगवान ने भगत के स्थान पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। तो सारा दिन में जब भगत भगवान के स्थान में खड़ा था, उसके सामने चार दृश्य आया। एक दृश्य तो एक बड़े व्यापारी, बड़े सेठ, वो जेब भर के पैसा भी था उसके पास, बड़ा सोना भी पहन के आया था, फिर भी भगवान को कहता था, भगवान आपने मेरे को इतना सारा मेरी इच्छा पूरा कर दिया है, बहुत अभी आगे मैं एक व्यवहार करता हूँ, उसमें आप इतना मेरे को परसेंटेज सारा दिलाना, आप दिलाएंगे तो आपको 1000 रुपए का अच्छी तरह पूजा करा दूंगा, अर्चना करा दूंगा। तो बड़े बड़े साहूकार लोग होते ना, उनके पास लाखों रुपया करोड़ों रुपया होगा तो भी भगवान के साथ भी उनका यही बोलना होगा, 100 रुपए का 1000 रुपए का। फिर ऐसा उसने भगवान से मांगते हुए, वो जैसे ये बागा उसने अच्छी तरह नमस्कार करने लिए गया, तो सो के नमस्कार करने गया, तो उसका जेब में जो पर्स में पैसा पड़ा था 1000 रुपया, वो सारा गिर गया, और उसने एक चैन बांधा हुआ था सोने का, वो भी गिर गया। उसने तो भगवान से मांग मांग करके, मैं ऐसा कंपनी कर रहा हूँ, मेरे को इतना परसेंटेज बढ़ाना, फिर बाद में आपको पूजा कराऊंगा, ऐसा बोल के चला गया। उसके बाद एक जिसने देखता रहा, जो भगत भगवान था, वो देखा ये क्या हो रहा है, अभी ये ऐसे ही जा रहा है, ये कौन उठाएगा, उसको मैं बोलूं आप लेके जाओ। फिर उसको याद आया जो भगवान ने शरत दिया था, साक्षी होके देखना, बोलना नहीं, सोचना नहीं। तो अपने आप को उसने बहुत जबरदस्ती बंधन डाल के कड़ा हो गया। फिर वो चले गया, दूसरा भगत आया, बहुत गरीब था, वो रोज भगवान को कहता था, हे भगवान मेरे को कुछ दे दो धन संपत्ति, मैं अपनी बच्ची को शादी करा दूंगा, मैं कुछ अपना तकलीफों को दूर कर दूंगा। वो भगवान को उस दिन भी ऐसे ही प्रार्थना किया करके, फिर उसने भी वो भगवान के सामने अपना शरीर को सुला के नमस्कार किया, प्रार्थना किया। जैसे ही उठा तो देखा उधर सारा पैसा पड़ा है, सोना पड़ा है, तो उसने पहले नहीं देखा था, तो सोचा भगवान ने दिया तो लेके गया। तो भी वो जो कड़ा था ना भगवान, उसको बहुत संकल्प चला, अभी क्या करो, इसको रोको नहीं ले जाओ, तो भी नहीं रोकना है, ना बोलना है, ना सोचना है। फिर अपने आप को तमा के कड़ा रहा, वो गया। उसके बाद दूसरा एक व्यक्ति आया, वो बोटमैन था, देशों में बड़े बड़े बोट ले जाता था, स्टीमर ले जाता था बड़ा बड़ा। उसने हमेशा जब जाता था हजारों लोगों को लेके, तो भगवान के पास आके मंदिर में प्रार्थना करके जाता था, और भगवान को कहा, भगवान मैं इतने हजारों लोगों को ले जा रहा हूँ, आप ही उनका रक्षा करना, ऐसा प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना कर रहा था, उस घड़ी वो साहूकार आया, उसने देखा, इसको बोला, यही मेरा सारा मैंने गिरा के गया, यही लिया है, पुलिस को लेके आया। उसने बोला, नहीं बाबा मैं नहीं देखा हूँ, मैं अभी आया हूँ। उसने समझा ही नहीं, उसको मार पीट के पुलिस के साथ लेके पुलिस स्टेशन में डाल दिया। दो दिन वो पुलिस स्टेशन में रह गया। ये भगवान को देख देख के थक गया, ये क्या हो रहा है, बेचारा इसने कुछ भी नहीं किया और इसको पुलिस वाले लेके गए, ये क्या भगवान का काम है, ये ऐसा तो मैं नहीं देख सकता हूँ। ऐसा सोच सोच के, अभी सोचना भी नहीं है, भगवान ने ऐसे शर्त लगा दिया, साक्षी होके देखना है। तो साक्षी हो गया फिर से। फिर उसको ये तीन दृश्य जब देखा, रात हो गया, भगत तो तक करके भगवान को बोला, भगवान आपका धंधा बहुत बुरा है, मैं आपका नहीं, आपका काम मैं नहीं कर सकता हूँ, आप अपना ही काम करो, मेरा धंधा ही मेरा अच्छा है, झाड़ू लगाना ही अच्छा है, क्या आप ऐसा, जो साहूकार आया वो साष्टांग नमस्कार करके सारा छोड़ के गया, और उसको देखते हुए नहीं दे बोलना है, और कुछ भी उसको रक्षा नहीं करना है, ऐसा धंधा मैं नहीं कर सकता। फिर बोला, जो गरीब लेके चले गया, फिर तीसरा पकड़ा बेचारा निस्वार जो व्यक्ति था वोटमैन, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, ये क्या धंधा है। फिर भगवान ने बोला, जो देखो पहला आए ना सेठ, वो कभी दान पुण्य नहीं करता, वो सिर्फ भगवान से मांगता रहता, लेता रहता, देने का सवाल ही नहीं है उसके पास। इसलिए अच्छा हुआ वो गिरा के गया तो गरीब को मिल गया, बेचारा गरीब बहुत समय याद करता था, प्रार्थना करता था, उसको मिला तो उसने अपनी बच्ची की शादी करा दिया, उसका तकलीफ दूर हो गया। फिर बोला, ये ठीक है। फिर वो तीसरा व्यक्ति बोटमैन को क्यों पुलिस को लेके आके उसको मार पीट करके उसको पुलिस थाना में ले गया। भगवान ने बोला, अच्छा हुआ उसको कुछ तो दो दिन भले पुलिस थाने में रखा, अगर बोटमैन स्टीमर ले जाता था तो उधर वो सारा स्टीमर डूब जाता था, तो कितना नाव बोटमैन रहता था ना लोग रहते थे, ऐसा होने वाला था इसलिए वो बच गया। इतना साक्षी स्टेज तीनों कालों को जानने वाला परमात्मा साक्षी रह सकता। हम बच्चे भी इतने ज्ञान सुनने के बाद भी साक्षी होके ना देख सकते ना सुन सकते ना रह सकते, भगत ही नहीं है, अज्ञानी लोग ही नहीं है। हम ज्ञानी आत्माएं कहाँ तक साक्षी स्थिति को अपनाया? क्या हमारे बारे में कोई हमने किया भी नहीं है कुछ भी भूल, हमारे ऊपर कोई आरोपण लगाते कुछ कंप्लेंट करते हम सुन सकते हम देख सकते हैं? कितना ज्ञानी होने के बाद भी हम अपने ज्ञान की स्थिति को खो लेते, डिस्टर्ब हो जाते, अशांत हो जाते, उसको सिद्ध करने के लिए लग जाते हैं। तो बाबा इसलिए कहता है ज्ञान की हर बात को जीवन में धारण करने से ही ज्ञान सागर परमात्मा कौन है वो समझ सकते हैं। उसकी हर बात को प्रैक्टिकल लाने में वो कितना सच्ची बात है, साक्षी अवस्था धारण करना कितनी आवश्यकता है, कितना हमारा जीवन सेफ्टी है वो अनुभव होता। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को अभी नहीं, जब ओम शांति भवन रहा तभी ही बाबा ने बोला था बच्चे अभी बाबा का पार्ट चेंज होता जाएगा समय अनुसार। एक जमाना था बाबा एक एक से एक एक घंटा दो घंटा मिलता था, बाद में ग्रुप में मिलता था। कितना मिला है बाबा, कितना ज्ञान रत्न दिया। अभी भी रिवाइज कोर्स मुरली सुनते हैं तो जैसे आज बाबा ने मुरली सुनाया ऐसा अनुभव होता, क्योंकि उसको ना मनन चिंतन किया, ना उसका याद रखा, ना उसको हमने जीवन में धारण किया, इसलिए अभी भी नया मुरली लगता। तो बाबा ने इतना हर बात की ज्ञान हमें दिया, पालना किया, हमें समझदार बनाया, उतना फिर से हम अपने जीवन को दौड़ा के अच्छी तरह उस ज्ञान बाबा ने दिया हुआ ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह पढ़ के सुन के मनन चिंतन करके अपने जीवन को शक्तिशाली बनाए, तो बाबा आज भी साकार से आकारी रूप से हमें बहुत पालना दे रहा है, देगा, देता ही रहेगा। तो हमें बाबा के ऊपर कोई भी प्रकार का आरोप नहीं लगाए, मधुबन के महत्व को नहीं छोड़े, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, इतना शांति पूर्वक आप सभी आके बैठे हैं, आगे ऐसा जमाना आएगा इधर तक भी पहुंच नहीं सकते हा? तो इसलिए अभी हम आराम से आ रहे हैं, आराम से बाबा के घर में इस बेहद परिवार से मिल रहे हैं। ऐसा कोई तीर्थ स्थान पर बेहद परिवार के रूप से मिलेगा? भगत लोग अपने सिर अपने मौज मनाते रहेंगे, एक दूसरों को ना देखेंगे, ना प्यार से मिलेंगे, ना शांति से सुनेंगे, लेकिन बाबा के घर में इतनी बड़ी शांति है, इतना बड़ा परिवार का एकता का अनुभव करते हैं, ब्राह्मणों का परिवार, विश्व परिवार, ये अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम बाबा से यही संकल्प करेंगे, बाबा इस संगम युग में जितना भी ऐसा मौका देंगे, भले आप आकार में ही अनुभव कराओ, लेकिन मधुबन आने के लिए हमको मौका दियो, मधुबन से भी हम वंचित नहीं रहे। ये डायमंड आन ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, ये इस मंदिर में बैठ के आप योग करो, बस कितना बाबा अनुभव कराएगा। चैतन्य मंदिर है, जड़ मंदिर नहीं। हम तिरुपति में जाते हैं तो जड़ मूर्ति को पट्टा बांधा हुआ है, उसको देखने के लिए लोग सभी पुजारी लोग उधर भगत जाने से बोलेंगे जरगंडी जरगंडी, एक मिनट भी वो खड़ा होने नहीं देंगे, जाओ जाओ बोलते रहेंगे। यहाँ कहाँ, एक घंटा अच्छी तरह योग करो अमृत वेले, फिर योग करो, फिर मुरली सुनो, फिर योग करते रहो, कोई बंधन नहीं है, शांति पूर्वक बाबा का अनुभव कर सकते, मिल सकते। बाबा हमें आत्मा का ज्ञान दिया है ना, शरीर का नहीं, शरीर तो बोल दिया बाबा ने ये नश्वर है, आत्मा ही बाबा से मिलना है, आकारी रूप से ही बाबा से मिलना है, हर रोज मधुबन में आके और अच्छी तरह मिल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये भाग्य हमें अभी भी प्राप्त है। तो इस बार हमें जो भी बाबा मौका देगा, चाहे साकार रूप में चाहे आकारी रूप में, उसका पूरा लाभ लेंगे, अच्छी तरह अनुभव करेंगे, इस सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम तीर्थ स्थान का अच्छी तरह लाभ लेकर के दुनिया वालों का जाके, चाहे लौकिक अलौकिक दुनिया वाले सबको अनुभव कराने का, बाकी भी थोड़ा समय बाबा ने हमें दिया है सेवा करके इस महान स्थान का अनुभव कराने का, हम सभी सेवा करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, अपना समय को सफल करते रहेंगे, ये संकल्प लेते हुए हम सभी बाबा के घर से बर के जाएंगे, संपन्न होके जाएंगे, संतुष्ट होके जाएंगे। ओम शांति। फिर बाबा को बाबा के साथ योग लगाएंगे।
Thank you.